আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান কানা নাবিয়্যাম ওয়া আদামু বাইনাল মায়ে ওয়াত্তিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। আম্মা বাদ, ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইন্নাল্লাহা ওয়া মালায়েকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নাবী, ইয়া আইয়ুহা আল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়িদিনা মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি সাইয়িদিনা মাওলানা মুহাম্মাদিন সালাতান দাইমাতান বিদাওয়ামিল মালিকিল হাইয়িল কাইয়ুম। জেসা কি আপকে ইলমে হ্যায় কি আইন্দা হফতে কো হযরত কুতবে রাব্বানি, হযরত আবু মখদুম, শাহ সৈয়দ মোহাম্মদ তাহির আশরফ আশরফি আল জিলানি নব্বর আল্লাহ মরকদহু কা উর্স মুবারক শুরু হো রহা। ইসি মুনাসবত সে আজ হম আপকি সিরত কে মুতালিক বয়ান করেঙ্গে। ওয়ামা তৌফিকি ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম। হযরত কি সিরত তো এক বহরে যখার হে কি আপনে কিস তরহ রিয়াজত আর মুজাহিদা কিয়া, ইসকে বাদ তবলীগ দিন, ইসকে বাদ মুরিদিন কি তরবিয়ত, ঔলাদ কি তরবিয়ত আর ফির বিসাল মুবারক কা ওয়াকিয়া, ইয়ে তমাম চিজে এক নশিস্ত মে বয়ান করনা নামুমকিন হ্যায়। তো মে কোশিশ করুঙ্গা কি মুখতসর মুখতসর ইন তমাম পর রোশনি ডালু, তাকে আপকো ইয়ে পতা চলে কি হামারে দাদা পীর, বহসোঁ কে দাদা পীর আর বহসোঁ কে পর দাদা পীর, তো উনকা মকাম আর মর্তবা ক্যা থা। কুতবে রব্বানি হযরত আবু মখদুম শাহ সৈয়দ মোহাম্মদ তাহির আশরফ আশরফি আল জিলানি, আপনে 9 সাল কি উমর সে রিয়াজত আর মুজাহিদা শুরু কিয়া। আব আপ সোচ সকতে কি 9 সাল কি উমর ক্যা হতি। আপকে ওয়ালিদে গিরামি ইয়ানি হামারে পরদাদা হযরত হাফিজ সৈয়দ হুসাইন আশরফ আশরফি আল জিলানি নব্বর আল্লাহ মরকদহু, ও ভি সিলসিলা আশরফিয়া কি এক আজীম শখসিয়ত আর রুহানিয়ত মে এক বুলন্দ মকাম রাখতে থে। ওয়াকিয়া ইয়ে হুয়া কি জব হযরত বহুত কম সিন থে তো অচানক এক বুজুর্গ তশরিফ লায়ে আর কাহা কি মে ইস বচ্চে সে কুরআন করিম সুননা চাহতা হুঁ। তো উনকে ওয়ালিদে গিরামি নে কাহা কি বেটা পড়ো কুরআন করিম কি কোই আয়াত কোই রুকু ইনকো সুনাও। আপকি আওয়াজ বহুত খুবসুরত থি আর জব আপনি কেফিয়ত মে তিলাওয়াত করতে থে তো লোগোঁ পর এক অজীব কেফিয়ত তারি হো জাতি। আপনে সূরা ইউসুফ কি তিলাওয়াত কি তো ও বুজুর্গ জো থে দৌরানে তিলাওয়াত কবি হাসতে থে কবি রোতে থে, ইয়ানি কবি মুস্কুরা রহে আর কবি বেখতিয়ার আঁখোঁ সে আঁসু জারি হো। তিলাওয়াত খতম হুই, উনহোনে আগে বড়কে আপকি পেশানি কো বোসা দিয়া। ওয়ালিদে গিরামি হাফিজ সৈয়দ হুসাইন আশরফ আশরফি আল জিলানি রহমতুল্লাহ নে পুছা, হযরত ইয়ে রোনে আর মুস্কুরানে কি ওয়াজা ক্যা থি। রোতা তো আদমি ইয়ে কি রিক্কত তারি হো যায়, বেখতিয়ার আঁখোঁ সে আঁসু জারি হো যায়, লেকিন আপ ফির দরমিয়ান মে মুস্কুরাতে থে ফির রোনে লাগতে থে ফির মুস্কুরাতে থে। বুজুর্গ নে ফরমায়া মে ইস বচ্চে কি পেশানি পর নূরে বিলায়ত দেখ রহা হুঁ, আগে চল কে ইয়ে বিলায়ত কে এক বহুত বড়ে মকাম পর পৌঁছেগা। মে মুস্কুরাতা তো ইসলিয়ে হুঁ কি ইয়ে বচ্চা এক মকাম পর যাকর রুহানিয়ত মে এক বুলন্দ দর্জে পর মকাম পর পৌঁছেগা, এক ওয়াক্ত আয়েগা জব। আর রোতা ইসলিয়ে হুঁ কি আপ উস ওয়াক্ত ইস দুনিয়া মে মৌজুদ নহীঁ হুঁগে, আপ দুনিয়া সে রুখসত হো চুকে, ইয়ানি আপ ইসকি বাহার নহীঁ দেখ সকেঙ্গে। আর ইয়ে উনকা এক ইশারা ভি থা হযরত কো কি আপ বহুত জলদ দুনিয়া সে রুখসত হো জায়েঙ্গে। বস ইস ওয়াকিয়ে কে বাদ সে হযরত কুতবে রব্বানি কে ওয়ালিদে গিরামি হাফিজ সৈয়দ হুসাইন আশরফ আশরফি আল জিলানি রহমতুল্লাহ আলাইহি নে খাস তৌর পর আপকি তরবিয়ত শুরু কর দি আর 9 সাল কি উমর সে হি চিল্লা কশি শুরু করা দি। আজ তো বড়ে বড়ে লোক নি কর সকতে, 22 সাল, 35 সাল, 40 সাল, কিসি কো বাতাও তো ঘবরা জাতা কে কেসে মে চিল্লা করু। 9 সাল কি উমর আর উস উমর মে কাহা তুমে সূরে মুজম্মিল কা চিল্লা করনা হ্যায়, কা ঠিক হ্যায় মে তৈয়ার হুঁ। আপ কিসি বচ্চে সে কহে তো ও কহেগা পহলে বাতাও চিল্লা ক্যা হোতা, ইয়ে তো খেলকুদ কি উমর হ্যায়। লেকিন আল্লাহ তবারক ওয়া তাআলা জিসকো কুছ বানাকর ভেজতা হ্যায় সলাহিয়ত নে পহলে সে পয়দা কর দি। फरमाया ठीक है मैं तैयार हूं। कहा लेकिन बेटा ये दरियाए जमुना में करना होगा और नाफ तक पानी में खड़े होकर चिल्ला करना होगा, यानी आधा जिस्म पानी में, 2 घंटे, रात को 2 बजे से सुबह 4 बजे तक। कहा ठीक है मैं तैयार। रात हुई, हजरत लेकर चले, खुद साहिल पर बैठ गए। हजरत खुद रब्बानी सैयद ताहिर अशरफ जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से कहा जाओ बेटा तुम खड़े हो जाओ। खड़े हो गए पानी में नाफ तक और सूरह मुजम्मिल पढ़ना शुरू कर दी। एक खास तादाद में पढ़नी है, 2 घंटे मुसलसल। आप जरा सा गौर करें कि 2 घंटे रात में अंधेरे में पानी में खड़ा होना यह मामूली बात नहीं है। रोजाना इसी तरह होता रहा, 2 घंटे खड़े होते फिर वापिस आते, हजरत दुआ फरमाते घर आ जाते, दूसरी रात फिर यही होता। यहां तक के 38 दिन हो गए। 38वां जो दिन था जब हजरत तशरीफ ले गए और पानी में खड़े हुए, वालिद गिरामी साहिल पर बैठे हैं, अचानक गैब से एक आवाज आई कि बाहर निकलो मगरमच्छ आ रहा। हजरत ने पीछे मुड़ के देखा वाली साहब की तरफ, उन्होंने कहा आ जाओ जल्दी। ये तेजी में आ गए, देखा कि समंदर में मगरमच्छ उसने मुंह निकाला और ऐसे चलता हुआ आया उसी जगह जहां हजरत खड़े थे, और उसने अपना मुंह फाड़ के इधर उधर देखा और उसके बाद फिर पानी में डुबकी लगाई चला गया। इधर मगरमच्छ जा रहा है, हजरत फरमा रहे जाओ वहीं खड़े हो जाओ, है किसी की हिम्मत? वो कहेगा यही पलटकर दोबारा मुझे ना खा ले, अरे ये पलटकर आ जाए दोबारा तो फिर क्या होगा? नहीं, हिम्मत थी, इस्तकामत, जाके फिर वहीं खड़े हो गए। फिर पढ़ते रहे, आधा घंटा गुजरा तो अब के से वो पानी के अंदर अंदर आया, पहले तो ऊपर से आए थे ना, अब अंदर की तरफ आया। और जब करीब पहुंचा तो फिर गैब से आवाज आई कि जल्दी बाहर निकलो मगर मचा रहा। हजरत ने फिर वालिद गिरामी की तरफ देखा, उन्होंने कहा जल्दी आओ तेजी में, तुम फौरन आ जाओ। हजरत तेजी में आए तो जिस जगह खड़े थे वहीं से उसने मुंह निकाला और यूं मुंह फाड़ के चारों तरफ देखा और फिर डुबकी लगाकर फिर चला गया। यानी अगर 1 मिनट की भी ताखीर होती तो वो वहीं था, अंदर अंदर पानी में उसी मकाम तक पहुंच गया। लेकिन एक हादसा यह हुआ कि जब हजरत तेजी के साथ आने लगे तो एक मछली पैर के नीचे आ गई और उसने आपके तलवे में काट लिया, और इस तरह काटा कि तलवे का गोश उड़ा दिया। जब आप साहिल पर पहुंचे तो खून बह रहा। अब ऐसे मौके पर न कोई डॉक्टर, न कोई हकीम, न कोई फर्स्ट एड, न कोई दवा, कोई पट्टी, कोई कपड़ा, कुछ नहीं। वालिद गिरामी ने अपनी पगड़ी उतारी, उसको फाड़ कर वो उनके पैर में बांधा ताकि खून रुक जाए, उस कपड़े को कस के बांध कर कहा जाओ फिर खड़े हो जाओ। यह है इम्तिहान। जब अल्लाह ताला कोई मकाम देता है तो पहले आजमाता है, जब बंदा इम्तिहान में पूरा उतरता है तब मकामात मिलते हैं, घर बैठे नहीं मिलते, मेहनत करनी पड़ती है, मुजाहिदा करना पड़ता। और उसी कैफियत में पैर पर पट्टी बनी हुई है, सख्त तकलीफ है, फिर पानी में खड़े हो, कहा इसको पूरा करना है, यह सूरह मुजम्मिल है, जलाली है, अगर तुमने छोड़ दिया तो फिर काम खराब हो जाएगा और अगर मुकम्मल कर लिया बस फिर तुम कामयाब हो जाओ। उसी कैफियत में फिर मजीद 1 घंटे खड़े होकर सूरह मुजम्मिल पढ़ी और फिर वापस आई। लेकिन अब हुआ क्या, पैदल जाना पैदल आना, 1 या 2 मील का फासला था घर से, पैदल जा रहे, कोई सवारी नहीं, रात को 2 बजे कहां से सवारी मिले। घर आते आते पैर सूज कर इतना मोटा हो गया। सुबह हो गई, हकीम को दिखाया, उसने कहा कि ये तो जख्म जो है इतनी आसानी से सही नहीं होगा। उसने दवा लगाई, पट्टी कर दी और कहा इस पर पानी नहीं लगना चाहिए, और पानी का ही सारा काम था। वालिद गिरामी ने कहा ठीक है। जब रात हुई कहा चलो बेटा पूरा करना है, हो कुछ भी मगर जो कदम उठ गया है वो पीछे हटाया तो अच्छा ना होगा, ये शेर है ना, हो कुछ भी मगर जो कदम उठ गया है वो पीछे हटाया तो अच्छा ना हो, हजारों मसाइब हैं राहे तलब में अगर हिचकिचाया तो अच्छा ना होगा, हमारी अता की हुई बेखुदी से अगर होश आया तो अच्छा ना होगा। तैयार हैं। अब कैफियत क्या है, एक पैर में पट्टी बंधी हुई है, एक हाथ वारिद गिरामी के कंधे पर है, एक हाथ में लकड़ी है। लंगड़ा कर आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते जो फासला 15 मिनट का था वो आधे घंटे एक घंटे में तय हो रहा, और उसी कैफियत में फिर पानी में उतरे, नाफ तक पानी में फिर जाके खड़े हो। यह है मुजाहिदा। फिर 2 घंटे मुसलसल पानी में खड़े रहकर सूरह मुजम्मिल शरीफ पढ़ी और उसके बाद फिर बाहर आए। तो 38वें दिन यह हुआ, कितने दिन रह गए? 2 दिन। 40 दिन का चिल्ला होता है ना, ये 2 दिन उन 38 दिनों पर भारी थे। उस वक्त तो सेहतमंद थे ना, चलते फिरते थे, आराम से चले जाते थे। अब जख्म भी है, पट्टी भी बंधी हुई है, दर्द भी है, तकलीफ भी है, और पैदल चलना भी है और जाकर पानी में खड़ा होना भी। इस कैफियत में बकिया 2 दिन पूरे किए, 40 दिन पूरे हुए, कहा अब तुम कामयाब हो गए, अब इसके समरात पूरी जिंदगी तुम देखोगे और इसका फैज जो है सब लोगों में लुटाओगे सारी जिंदगी, सूरह मुजम्मिल शरीफ। तो कुतुब रब्बानी हजरत सैयद ताहिर रिशव जिलानी रहमतुल्लाह अलैह सूरह मुजम्मिल के आमिल थे, हजारों को उन्होंने पढ़वा दी और खुद सारी जिंदगी पढ़ते रहे। उसके बाद 6 महीने तक उस जख्म का इलाज हुआ, 6 महीने तक वो पक गया पैर, जाहिर है पानी में मुसलसल जा रहा है और डॉक्टर कहते हैं, हकीम कहते हैं कि पानी ना लगे, मरम पट्टी हो रही है, पक गया, फिर दवा लगाई, फिर पक गया। 6 महीने के बाद वो दुरुस्त हुआ। 6 महीने तक मुसलसल मुख्तलिफ हकीमों डॉक्टरों का इलाज होता रहा, 6 महीने के बाद वो जख्म सही हुआ। उसके बाद भी पैर में थोड़ा सा गड़ा था। वारिद गिरामी हजरत अशरफुल मशाइख सैयद अहमद अशरफ अशरफी अल जिलानी नव्वर अल्लाह मरकज़हु फरमाते हैं कि जब मुरीदीन हजरत के पैर दबाते थे तो तलवे में देखते थे गड़ा है थोड़ा सा पैर में, हजरत ये क्या है? तो हजरत मुस्कुराते थे कि हाँ ये भी एक कहानी है। कभी मुरीदीन में बैठ के नहीं कहा हमने ये चिल्ला किया, हमने ये किया वो किया, नहीं, जो कुछ किया सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, वो राजी हो जाए यही काफी। यह है वली की शान, वो अपने आप को छुपाता है, अपने रियाजत और मुजाहिदे को छुपाता है, कभी किसी पर जाहिर नहीं करता। और याद रखो जो लोगों में बैठकर बता दे हमने ये किया हमने वो किया हमने वो किया, समझ लो इसने कुछ नहीं किया, खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है। खाली बर्तन देखो ना, उसको बजाओ आवाज होगी, और जिसमें पानी भरा है पूरा या कोई भी चीज है उसमें आवाज नहीं होगी। तो ये उलूम और मारिफ का समंदर अपने सीने में लिए बैठे हैं, किसी को नहीं बताते, हजारों राज इनके सीने में हैं, मखलूक के राज भी इनके सीने में हैं, खालिक के राज भी इनके सीने में, लेकिन जबान पर कभी कोई लफ्ज नहीं आए। अपने आप को छुपाते रहे, नहीं हम कुछ नहीं, हमने कुछ नहीं किया, जो किया अल्लाह की रजा के लिए, वो राजी हो जाए यही हमारी कामयाबी। तो ये पहला मुजाहिदा था और पहला चिल्ला था हजरत कुतुब रब्बानी सैयद ताहिर रिशव जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जो 9 साल की उम्र में आपने किया। बताइए उसके कुछ दिन के बाद ही वालिद गिरामी का इंतकाल हो गया। उनको पहले से इशारा मिल चुका था, पता था, तो इसीलिए उन्होंने उस उम्र से ही चिल्ला कशी शुरू करा दी थी। अपने सामने सूरह मुजम्मिल शरीफ का चिल्ला 9 साल की उम्र में अपने साहबजादे को कराया, जो उन्होंने निहायत कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया। कुछ अरसे के बाद विसाल हो गया। फिर हजरत ने इल्मे दीन की तरफ तवज्जो की, मदरसा हुसैन बख्श दिल्ली में, आज भी वो मदरसा मौजूद है। 97 में जब मैं दिल्ली गया तो मैं उस मदरसे की जियारत के लिए गया कि यहां दादा हुजूर किबला ने तालीम हासिल की थी, और वहां के उस मदरसे के फोटो वगैरह खींच कर लाया, एक यादगार थी। वहां से इल्मे दीन हासिल किया, दौरे हदीस शरीफ मुकम्मल हुआ, फिर उसी मदरसे में अरसे दराज तक आपने तदरीस के फराइज अंजाम दी, लेकिन एक लगन एक तड़प दिल में थी कि रूहानियत का हुसूल किसी तरह हो। तो उवैसिया सिलसिले के एक बुजुर्ग जिनका नाम था हजरत अमीर अली शाह कंबल पोश रहमतुल्लाह, हमेशा कंबल पहने रहते थे इसीलिए कंबल पोश मशहूर थे, उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने एक निगाह में पहचान लिया। उन्होंने कहा कि हम एक चिल्ला कराएंगे कश्मीर की पहाड़ियों में, मुरीदीन में ऐलान किया, हजरत उनकी खिदमत में हाजिर होते थे, मुरीदीन तैयार हो गए, उसने कहा मैं भी जाऊंगा, इसने कहा मैं भी, उसने कहा मैं भी, 8-10 आदमी तैयार हो गए। फरमाए सुनो सख्तियां बहुत हैं, रोजा रखना पड़ेगा, बाज़ औकात भूखा रहना पड़ेगा, और बाज़ औकात सिर्फ खजूर से रोजा और खजूर से इफ्तार यानी सहरी और इफ्तार सिर्फ एक खजूर से, इसके अलावा कुछ नहीं। बहुत ज्यादा सख्तियां मुजाहिदा, कहा हुजूर हम कर लेंगे, कहने को तो सारे तैयार हो गए। हजरत को लेकर वो रवाना हुए, 8-10 मुरीदीन भी साथ हैं। कश्मीर की पहाड़ियों में एक गार मुंतखिब किया और वहां चिल्लाकशी शुरू हो गई। एक इसमें पाक बताया कि ये तुम सबको पढ़ना है, पढ़ना शुरू कर दिया। सख्ती हुई, एक साहब भाग गए, कुछ दिन के बाद दूसरे भाग गए, कुछ दिन के बाद तीसरे भाग गए। सख्तियां बर्दाश्त नहीं कर सके, मुसलसल रोजे रखना। और कैफियत क्या थी? हजरत खुतबे रब्बानी सैयद ताहिर अशरफ जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हजरत कंबल पोश रहमतुल्लाह अलैह की कैफियत यह थी कि हमने कभी भी किसी को नहीं देखा कि किसी ने आके उनको नजराना दिया हो, कोई पैसा दिया हो। अरे जंगल में रह रहे हैं, पहाड़ियों में रह रहे, कभी बैठे बैठे जेब से बिल्कुल नया नोट निकाला, जैसे अभी छप कर आए, जाओ बेटा कुछ खाने के लिए ले आओ, किसी को भेज दिया, वो गया आबादी में से कुछ खरीद के ले आया, कुछ खाया खाया, बाकी सब जानवरों को दे दिया। और कभी कई दिन तक कुछ नहीं मंगाया, भूख लगे तो दरख्त के पत्ते खा लो, प्यास लगे तो चश्मे का पानी पी लो। और कभी मुसलसल कई हफ्ते तक रोजे रखवाए, खजूर से सहरी और खजूर से इफ्तार, इफ्तार और सहरी सिर्फ खजूर से, इसके अलावा कुछ नहीं। और ये चीज, ये इसमें पाक मुसलसल पढ़ना है। फरमाते थे कि कभी एक जंगल में जाकर बैठ जाते थे, कहते चलो बेटा आज हम जिक्र करते हैं, और जब जिक्र करते आंखें बंद करके बैठ जाओ, बस ला इलाहा इल्लल्लाह सब शुरू हो जाते थे। कहते जब हम आंख खोलते थे तो बहुत से जानवर भी हमारे चारों तरफ बैठे थे, वो भी जिक्र कर रहे होते, दरख्तों से भी अल्लाह अल्लाह की आवाज आ रही होती, अजीब कैफियत थी। कभी समंदर के करीब जिक्र करते थे तो लगता था कि मछलियां भी जिक्र कर रही। पूरे सफर में, पूरे चिल्ले में अजीब और गरीब वाकयात पेश आए। गरज ये, एक एक करके सब भागते रहे, आखिर में सिर्फ हजरत कुतुब रब्बानी रह गए। फरमाया कंबल पोश रहमतुल्लाह अलैह ने, मुझे पता था कि ये सब शौक में आ गए, लेकिन सख्तियां बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये सब भाग जाएंगे, तुम ही आखिर में रह जाओ। हजरत ने कहा कुछ भी हो मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगा, लेकिन जो आपने कहा है वो मैं करके रहूं, मेरी जान भी कह चली जाए, जब मैंने कदम रख दिया है तो मैं रूहानियत हासिल करके रहूं। और वही हुआ, 40-40 दिन के कई चिल्ले हजरत ने कराए, कई साल आप कश्मीर की पहाड़ियों में रहे, सख्तियां बर्दाश्त की, सोबतें बर्दाश्त की, भूखे रहे, प्यासे रहे, अक्सर महीने मुसलसल रोजे रखे, ये तमाम चीजें करके जब आखिर हुआ, बिल्कुल एंड, चिल्ला खत्म होना था, तो गार में हजरत को तशरीफ ले गए और तवज्जो इत्तेहादी दी। तरीकत की इस्तेलाह में एक होती है तवज्जो इत्तेहादी, यानी मुर्शिद अपने मुरीद पर खास तवज्जो करता है, दरमियान में कोई नहीं, एक गार में दोनों हैं, पीर और मुरीद, और वो सिर्फ खास तवज्जो अपने मुरीद पर दे रहे हैं, और उसके बाद फरमाया जाओ तुम कामिल हो, तुम्हें हमने सब कुछ अता कर दिया, तुम्हारा चिल्ला भी मुकम्मल हो गया। और उसके बाद कैफियत यह हुई कि जब हजरत गार से बाहर आए तो जब धूप में निकलते थे तो परिंदे आकर आपके ऊपर साया करते थे, 8-10 चीले कहीं से आती थी ऐसे पर फैला के, हजरत चल रहे नीचे, ऊपर वो साया करते चल रही। कोई और होता तो बड़ा खुश होता कि ये तो मेरे लिए एक मेरी करामत है, जान जान के धूप में निकलता, लोग मुझे देखेंगे, देखो चीले मेरे ऊपर साया कर रही, मैं धूप में निकल रहा हूं, मेरे ऊपर साया है। लेकिन नहीं, अल्लाह का वली बेनफ्स होता है, वो दिखावा नहीं चाहता, रियाकारी नहीं चाहता, उसका अमल खालिस अल्लाह के लिए होता। आपने हजरत कंबल पोश साहब से अर्ज की, हुजूर आप फरमाते हैं तुम्हें तबलीग करनी होगी, तुम्हें लोगों को हिदायत देनी होगी, और ये जो मेरे साथ ये लगे हुए हैं, जब मैं धूप में निकलता हूं ये चीले आकर अपना पर फैलाकर मेरे ऊपर साया करती हैं, तो ये तो मैं जहां जाऊंगा लोग देखेंगे, मरकूज नजर बन जाऊंगा, मैं इस चीज को पसंद नहीं करता। वो मुस्कुराए, फरमाया ठीक है, एक चीज बताई, ये पढ़ो और आसमान की तरफ इशारा कर दो। आपने पढ़कर इशारा किया, वो चीले गायब हो गए, उसके बाद वो चीले नजर नहीं आए। फिर हजरत शेख मियां अब्दुस समद फखरी निजामी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आप हाजिर हुए, उन्होंने, अच्छा इस दौरान एक बात जो रह गई वो ये थी कि जब ये चिल्ला कशी हुई तो पूरे चिल्ले में, यानी इस दौरान जितने भी चिल्ले आपने किए, कंबल का लिबास इस्तेमाल किया, कंबल का पजामा और कंबल का कुर्ता, सर्दी हो, गर्मी हो, आंधी हो, बारिश हो, तूफान हो, कैसे ही मौसम हो, उन्होंने कहा जब तक ये चिल्ला जा रही है यही लिबास पहनना है, दूसरा नहीं पहनना। अब आप देखें गर्मी में कोई कंबल ओढ़ ले, वो कंबल का लिबास पहने हुए, सर्दी में तो चलो चल जाएगा, गर्मी में धूप में चल रहे हैं वही लिबास। नफ्स खुशी है, नफ्स को मारना है। और जब चिल्ला मुकम्मल हो गया, कहा ठीक है अब ये लिबास जो है इसको दरिया में डाल दो, अब अपने कपड़े पहन लो। और जब हजरत कंबलपोश रहमतुल्लाह अलैह रुखसत हो गए, कुछ अरसे बाद उनका विसाल हो गया, उन्होंने आपको बैत नहीं किया लेकिन सिलसिला उवैसिया की खिलाफत हजरत को अता फरमाई और मुर्शिद कामिल की बशारत दी कि अन करीब तुम्हें एक मुर्शिद कामिल मिलेगा और उसी से तुम बैत होगे। फिर हजरत की मुलाकात हजरत मियां अब्दुल समद साहब फखरी निजामी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से हुई, सिलसिला फखरिया निजामिया के बुजुर्ग थे। वो नीला तहबंद इस्तेमाल करते थे और ये नीला तहबंद जो है ये निजामिया सिलसिले का है, ये भी आपकी मालूमात में मैं इजाफा करूं। आपने देखा होगा कि आपके पीर मुर्शिद मेरे वालिदे गिरामी अशरफुल मशाइख सैयद अहमद अशरफ अशरफी अल जिलानी नब्बरल्लाहु मरकदहु हमेशा नीला तहबंद और चिकन का कुर्ता इस्तेमाल करते, सारी जिंदगी उन्होंने यही इस्तेमाल किया। तो इसकी वजह यह थी कि दादा हुजूर किबला ने जब वो कंबल का लिबास उतारा और वो जाकर दरिया में उसको डाल दिया, ठंडा कर दिया, और अपना लिबास पहना जो उस जमाने में कुर्ता पजामा जो आमतौर पर दिल्ली में चलता था, तो जब हजरत मियां अब्दुल समद फखरी निजामी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई तो वो यही नीला तहबंद और चिकन का कुर्ता पहनते थे। अपनी तरफ से उन्होंने लाकर वो नीला तहबंद दिया, चिकन का कुर्ता दिया कि बेटा अब तुम ये इस्तेमाल करो। उसके बाद से हजरत कुतुब रब्बानी ने सारी जिंदगी वही नीला तहबंद इस्तेमाल किया, आपने शलवार या पजामा इस्तेमाल नहीं किया। और उन्हीं की इत्तिबा में मेरे वालिद गिरामी अशरफुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही लिबास इस्तेमाल किया। फरमाते जिस वक्त मैंने अपने वालिद गिरामी से इजाजत ली हजरत कुतुब रब्बानी से कि आप ये नीला तहबंद पहनते हैं ये कुर्ता, तो अगर इजाजत हो तो मैं भी पहनना शुरू कर दूं, तो उन्होंने कहा बेटा पहन तो रहे हो लेकिन अब तख्ते पे उतरना चाहिए, यानी मरते दम तक यही लिबास होगा। कहा हुजूर बिल्कुल होगा। और ऐसी इस्तेकामत इख्तियार की कि उन्होंने सारी जिंदगी अपने वालिद और अपने शेख की इत्तिबा में सारी जिंदगी नीला तहबंद और वही कुर्ता इस्तेमाल किया। तो ये एक बुजुर्गों का एक तरीका है, उनका लिबास पहनना, उनकी वजाकता इख्तियार करना, इससे भी ये मंजिलें जो हैं ये हल होती। ये सिलसिला चलता रहा। फिर मुजद्दिद सिलसिला अशरफिया हम शबीह गौसुल आजम सैयद शाह अली हुसैन अशरफी अल जिलानी अल मारूफ अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह से आपकी मुलाकात हुई। वो तशरीफ लाए और उन्होंने हजरत को सिलसिला अशरफिया में बैत किया और आपको तमाम सलासिल की खिलाफत अता फरमाई। तो हजरत कुतुब रब्बानी को अशरफी मियां से भी खिलाफत है और उनके अलावा सिलसिला उवैसिया की भी खिलाफत है, उसके अलावा सिलसिला चिश्तिया की भी खिलाफत है, उसके अलावा सिलसिला नक्शबंदिया सोरवर्दिया की भी खिलाफत मुख्तलिफ बुजुर्गों से। अब यह सिलसिला हुआ, दीगर मुजाहिदात आपने किए, सख्त से सख्त चिल्ला कशी की मुजाहिदा रियाजत करते रहे। अब हुक्म हुआ कि तबलीग दीन के लिए रवाना हो जाओ। तो आपके एक पीर भाई थे, उन्होंने आके कहा कि ताहिर मियां मेरे कुछ मुरीद हैं कलकत्ते में, मैं आपको लेकर चलता हूं, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपका तारुफ लोगों से करा दूंगा और उसके बाद फिर ये कि वहां पर आपका सिलसिला शुरू होगा। आपने फरमाया कि मुझे जाने की जरूरत नहीं, मैं जहां पर हूं यहीं ठीक हूं। इनकार किया लेकिन उन्होंने इसरार किया कि नहीं आप मेरे साथ चले। बसद इसरार बार बार कहकर हजरत को अपने साथ ले गए। अपने एक मुरीद के यहां वो ठहरे, हजरत कुतुब रब्बानी भी उनके साथ। अब वो थे खाली, यानी उन्होंने कोई रियाजत मुजाहिदा नहीं किया था। अब जाहिर है जो मुजाहिदा करे उसके अंदर कशिश होती, खुद ब खुद लोग उसकी तरफ आते हैं। रूहानियत में कशिश है ना, तो जिसमें रूहानियत होती है वो जिंदा हो तो उसके गिर्द मेला और विशाल हो जाए तो मजार के गिर्द मेला। तो रूहानियत तो खींचती है। अब हजरत की कैफियत ये कि उनके साथ बैठे हैं, अब जो भी लोग आ रहे हैं पहले हजरत से मिलते हैं बाद में उनसे मिलते हैं। रूहानियत तो अपनी तरफ खींच रही है, चेहरा बता रहा है, नूरे विलायत चमक रहा। अब उनके अंदर हसद पैदा हो गई, ये क्या बात हुई, मैं इनको लेकर आया और लोग इन्हीं की तरफ जा रहे हैं, मैंने तो तारुफ भी नहीं कराया, अभी लोगों को बताया नहीं कि ये कौन है। उनका तो मैं आपका तारुफ कराऊंगा, ये सैयदजादे ये आले रसूल हैं, इनके हाथ पे बैत करो, इनका कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, जो दाखिल हो सीधा हजरत की तरफ। अब उनके अंदर हसद पैदा हुई। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तीसरे दिन उन्होंने रात में ही कह दिया, ताहिर मियां अब मामला अलग है। उन्होंने कहा क्या हुआ, अरे मेरे मुरीद भी आपकी तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं, मेरा सिलसिला तो खत्म हो जाएगा, मैं तो आपको लेकर आया था तारुफ कराने के लिए, यहां तो तारुफ की जरूरत ही नहीं पड़ रही, जो भी आता है आपकी तरफ चला जाता, लिहाजा अब आप यहां से जाइए। हजरत ने फरमाया मैं कहां जाऊं, यहां मेरा कौन जानने वाला है, आप मुझे लेकर आए जबरदस्ती करके, इसरार करके, मेरी तो मर्जी नहीं थी, मैं दिल्ली में आराम से था। नहीं नहीं बस अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरा अपना हलका खत्म हो जाएगा, मेरे मुरीद भी आपकी आपको देखकर आपकी तरफ जा रहे हैं। हजरत फरमाते हैं जब ये हुआ और उसने ये बेवफाई की, बस मेरी गैरत ने गवारा न किया कि अब एक मिनट भी मैं यहां रुकूं, फौरन अपना बिस्तर अटैची या जो भी था उठाया और रवाना हो, रोका भी नहीं उसने। रात को कहा, फरमाया मैं रात गुजार के सुबह चला जाऊंगा, सुबह जब हजरत निकले तो नाश्ते तक को नहीं पूछा, कहा ठीक है आप जाइए। फरमाते हैं बस मैं अल्लाह के भरोसे पर निकला, अब कहां जाऊं, दयारे गैर है, कोई जानने वाला नहीं, कोई मुरीद नहीं, कोई मुतकिद नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, पहली मर्तबा कलकत्ते तशरीफ ले गए, कहा सोचा कि जब कोई घर नहीं तो अल्लाह का घर तो है, चलो मस्जिद में चलते। एक मस्जिद में गए, मस्जिद के इमाम साहब से मुलाकात की कि मैं मुसाफिर हूं, ये सामान अगर आप अपने हुजरे में रख लें तो मैं कुछ देर मस्जिद में ठहर जाऊं। उन्होंने बड़े गौर से देखा हजरत को, उनकी शख्सियत से मुतासिर हुए, हाँ ठीक है अपना सामान मुझे दे दीजिए। उन्होंने अपने हुजरे में रख लिया, उनको भी नहीं बताया कि मैंने नाश्ता नहीं किया है, जाकर मस्जिद में बैठ गए, जिक्र अजकार में मशगूल हो। जोहर का वक्त हो गया, सुबह का नाश्ता नहीं किया, दोपहर के खाने का वक्त हो गया, सिर्फ मस्जिद से पानी पिया और बैठ गए। जोहर की नमाज हुई, आपने बाजमात नमाज अदा की, फिर कोने में जिक्र अजकार में बैठ गए। असर हो गई, मगरिब हो गई, इशा हो गई, सुबह से भूखे हैं और इशा हो गई, एक लुकमा मुंह में नहीं गया। एक उसकी बेवफाई का गम कि ये मुझे लेकर आए और इस तरह किया। फरमाते बस मेरे दिल पर एक अजीब सी कैफियत हुई और बेख्तियार जबान से निकला, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, इन्नी फी बाहर हम्मी मुगरकुन खुज यदी साहिल लना इश्काल। या रसूल अल्लाह मुझे गम के दरिया से निकालिए, मेरा हाथ पकड़कर निकालिए, मैं इस दरिया में डूब रहा हूं, आप मुझे निकालिए। और ये जब पढ़ा और आंखों से आंसू जारी हो गए, और आवाज हजरत की बहुत खूबसूरत थी कि जो भी सुनता था वो झूमने लगता। तो थोड़ी सी आवाज से पढ़ा, इमाम साहब ने भी देखा और कि ये सुबह से यहां मौजूद है। अब देखो नबी पाक अलैहिस्सलाम को कोई सच्चे दिल से पुकारे सरकार जरूर सुनते हैं, ये तो हमारा अकीदा, लेकिन तलब सच्ची होनी चाहिए। हजरत ने पुकारा, अरे वो गैरों की सुनते हैं तो अपनी औलाद की नहीं सुनेंगे। अचानक ये हुआ कि कलकत्ते में धर्मतल्ला के मैदान में एक बहुत बड़ा जलसा होना था, और वहां के एक बहुत बड़े खतीब थे, उनकी तकरीर थी, जलसे वालों ने इंतजाम कर लिया, बैनर लगा दिए, पोस्टर लगा दिए, सब कुछ, और एंड टाइम पर खतीब साहब की तबीयत खराब हो, और ऐसी तबीयत खराब हुई उन्होंने कहा मैं नहीं जा सकता, इनकार कर दिया। जलसे वाले परेशान, कोई भी मिल जाए, कोई छोटा मोटा मुकर्री मिल जाए, कम से कम आके तकरीर कर दे, जलसा तो हो जाए, कोई मिल ही नहीं रहा, जहां जा रहे हैं लोग जवाब दे रहे हैं, उलमा कह रहे जी हमारा तो टाइम है, वो कहते हैं हमें फलन जगह जाना है। होते 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 इसी मस्जिद में पहुंच गए जहां हजरत रौनक अफरोज थे। इमाम साहब से कहा कोई ऐसा आलिम हो या आप हमारे साथ चले। उन्होंने कहा भाई मैं तो तकरीर करना जानता नहीं, ना मैं किसी ऐसे आलिम को जानता हूं जो आपके साथ चला जाए, लेकिन हाँ एक बुजुर्ग सुबह से हमारी मस्जिद में आए हुए, वो मुसाफिर हैं, उन्होंने अपना सामान मेरे हुजरे में रखवाया था, ना मैं उनके नाम से वाकिफ हूं, ना उनकी और किसी चीज से वाकिफ हूं। हां, लेकिन चेहरे से लगता है खानदानी आदमी और चेहरे से लगता है कि वाकई वो कोई वली। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब कैफियत यह है कि मैं देखता हूं कि सजदे में सर रखे हुए बहुत ही प्यारी आवाज में ये पढ़ रहे। मुझे लगता है वो जरूर तकरीर करना जानते होंगे, उनके पास चले जाओ, अगर वो राजी हो जाएंगे तुम्हारा काम बन जाए। जलसे वाले पहुंचे, जाके सलाम किया, हजरत ने सजदे से सर उठाया, अपने आंसू पोछे, क्या मसला है? कहा, हुजूर इस तरह है, जलसा हमने रख लिया, खतीब साहब जो आने थे, जो मुकर्रर थे, उनकी तबीयत खराब हो गई, पब्लिक मौजूद है, मुसलसल आ रही है, हमारी इज्जत का सवाल है, हम क्या करें? आप अगर तकरीर करना जानते हैं आप हमारे साथ तशरीफ ले चले। अब देखो उस मौके पर भी सुबह से रात हो गई, एक लुकमा मुंह में नहीं गया। कोई और होता तो कहता कुछ खाना तो खिला दो फिर जाके मैं तकरीर करूं। फरमाते नहीं, मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया, मैं इनसे कहूं, इनसे क्यों कहूं। उसी कैफियत में कहा ठीक है हम चलते। इमाम साहब के हुजरे से अपनी अटैची मंगाई, जब्बा मुबारक पहना, ताजे अशरफी अपने सर पे रखा, असा अपने हाथ में लिया और समनानी जाहो जलाल के साथ तशरीफ ले गए। अब जो उन्होंने देखा तो वो देखकर हैरान रह गए। मजमे ने देखते ही नारे लगाना शुरू कर दी और हजरत कुतुब रब्बानी जाकर स्टेज पर रौनक अफरोज हुए। आपकी वो बाजबरू शख्सियत, वो रौब, वो दबदबा देखकर जिसने देखा वो सुभान अल्लाह ही कहता रह गया। फिर हजरत ने उसी भूख में खिताब शुरू किया। फरमाते मैंने सोचा कि मैं क्या बयान करूं, चलो सरकार का हुस्न जमाल बयान करूं, नबी पाक अलैहिस्सलाम को। हजरत फरमाते हैं जब मैंने शुरू किया तो मुझे महसूस हुआ कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सामने तशरीफ फरमाए, मैं जियारत कर रहा हूं और लोगों को बता रहा हूं। 2 घंटे मुसलसल तकरीर की, लोग आकर इतर की शीशियां आपके ऊपर उलटते थे, पैसे बरसाते थे, नारे लगाते थे, सुभान अल्लाह कहते थे, वाह वाह कहते थे। फरमाते मुझे नहीं पता मैंने क्या बयान किया, मैं जियारत करता रहा और बयान करता रहा। और 1 घंटे या 2 घंटे के बाद जब वो खिताब खत्म हुआ तो लोगों ने कहा हुजूर आप बैत करते हैं? कहा हां, हम सब आपके मुरीद हैं। रुमाल से रुमाल बनते चले गए, जितने मौजूद थे कई हजार आदमी उसी वक्त सिलसिला अशरफिया में दाखिल हो। ये है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम। अब जलसे के बाद सब अपने घर ले जाने के लिए तैयार। वो कहता है मेरे घर, वो कहता है मेरे घर, मेरे कहते मेरे घर। एक वक्त वो था कि कोई घर नहीं था, अब सारे मुरीदों के घर मौजूद है सब। उस वक्त भी नहीं फरमा रहे कि मैं भूखा हूं, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। यह है वली की कनात, इस्तेकामत। भूख में 2 घंटे खिताब किया है और उस वक्त भी उन लोगों से नहीं कहा। फिर फरमाया कि नहीं, मैं जिस घर से आया हूं उसी घर में जाऊंगा, मैं अल्लाह के घर से आया हूं, मैं किसी के घर में नहीं जाऊंगा। उसी मस्जिद में दोबारा तशरीफ ले गए। इमाम साहब को पता चला कि हजरत तो साहिब सिलसिला हैं, साहिब तरीकत हैं, उन्होंने अपना एक दूसरा हुजरा खोल दिया, हजरत आप यहीं कयाम फरमाए। और जब लोगों को बाद में पता चला तो फिर खाना लेकर आए। ये है अल्लाह के वली की शान, किसी से नहीं कहा, उसी भूख में, उसी प्यास में, उसी चीज में तकरीर की। उसके बाद तो फिर सिलसिला शुरू हुआ। तो फिर हजरत 12 साल उसी मस्जिद में कयाम फरमा रहे, जबकि मुरीदीन का एक मजमा था। फरमाते नहीं, मैं पहली मर्तबा यहीं आया था, यहीं कयाम हूं। वैसे लोगों के तशरीफ ले जाते थे, कभी दावत में, कभी वैसे जलसों में, लेकिन वापिस फिर उसी मस्जिद में। 12 साल के बाद लोगों ने इसरार करके, एक इस्लामिया बिल्डिंग थी वहां पर कलकत्ते में, उसमें एक मुरीद ने एक पूरा फ्लोर जो था वो बुक करा लिया पूरे साल के लिए। वो पूरे साल किराया देता था, ऐसे ही खाली पड़ा रहता था, और जब हजरत जाते थे तो वहीं कयाम फरमाते। उसमें एक छोटा कमरा था, उसमें अटैच बाथ था, उसके बाद एक बहुत बड़ा हॉल कमरा था। हजरत अपने हुजरे में आराम फरमा रहते थे, वज़ाइफ पढ़ते थे, जब मुरीदीन आ जाते थे फिर आप बाहर तशरीफ लाते थे और फिर लोगों को रुख्दो हिदायत फरमाते। इस तरह आपने तबलीग की, फिर वहां से आप दीगर इलाकों में तशरीफ ले गए। और कश्फ का यह आलम था, मुरीदीन का मजमा था, एक शख्स हाजिर हुआ, हुजूर मेरे वालिद को या पता नहीं किसी अजीज को बताया कि बवसीर है, आप कोई नुस्खा बता दें। आप हिकमत भी फरमाते थे, तो आपने फरमाया कागज कलम लो और लिखो, मैं बता रहा हूं। उसने लिखना शुरू किया, पीछे एक मुरीद बैठा था, उसने कहा मैं भी लिख लूं। पीछे बैठा पुश पर, उसने कहा मैं भी लिख लूं। उसने लिखना शुरू किया, फरमाया फकीर का हुक्म सिर्फ आगे वालों के लिए, पीछे वाले लिखने की कोशिश ना करें। अरे चेहरा तो इधर है, देख पीछे रहे, یہ اللہ کے ولی کی شان. اتقوا فراست المؤمنین فانه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا, اور جو اللہ کے نور سے دیکھے وہ جیسے ظاہر کو دیکھتا ہے ایسا باطن کو بھی دیکھتا, جیسے چہرے کو دیکھتا ہے ایسے دل کو بھی دیکھتا, جیسے زبان کو دیکھتا ہے کہ اس کی زبان پہ کیا ہے ایسے دل کو بھی دیکھتا ہے کہ دل میں کیا. اس طرح حضرت قطب ربانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی گزاری. بہت سے مقامات پر جادوگروں سے مقابلے ہوئے, بڑے بڑے مقابلے ہوئے. ایک مقام پر ایک بہت بڑا درخت تھا, اس پر ایک دیو کا اثر تھا, بہت گھنا درخت تھا اور کئی سو سال پرانا درخت, اس کے نیچے سے کوئی گزر نہیں سکتا تھا. جب حضرت اس گاؤں میں تشریف لے گئے, گاؤں والوں نے کہا کہ ہمارا پیر جو ہے بڑا زبردست ہے. لوگوں نے کہا ایسے ہی تم اپنے پیر کو چڑھا رہے ہو. انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے حضرت کے کرامت بیان کی, انہوں نے انکار کیا. تو پھر بات یہاں پر ٹھہری کہ اگر رات کو حضرت اس درخت کے نیچے سے گزر جائیں تو ہم سمجھ لیں کہ یہ کامل ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا مریدین نے بھی یہ کیا کہ حضرت کو بتایا نہیں کہ اس درخت پہ کیا ہے. اس زمانے میں گھوڑوں پہ سفر ہوتے تھے, حضرت گھوڑے پہ سوار ہیں اور آپ کے پیچھے آپ کے ایک مرید تھے, ان کا نام تھا لیاقت علی خان, وہ پیچھے تھے, حضرت گھوڑے سواری کرتے تھے. آپ وہاں جب پہنچے تو مریدین نے کہا حضرت آپ ادھر سے جائیے, ہم دوسرے راستے سے آ رہے ہیں. خود راستہ بدل دیا, ان کو اس راستے پہ چھوڑ دیا. حضرت فرماتے جب میں قریب پہنچا تو ایک دم ایک ہیبت ناک آواز آئی کہ ٹھہر جاؤ, خبردار جو اس درخت کے نیچے سے گزرے ورنہ ہم ختم کر دیں گے. فرمایا کہ میں حیران ہوا کہ یہ آواز کس کی ہے. اچانک دیکھا کہ ایک بد ہیبت دیو ہیکل مخلوق درخت سے ظاہر ہوئی اور سامنے آ کے کھڑی ہو, بہت لمبی چوڑی اور جسم پر اس کے بالی بال, ہیبت ناک شکل, اور کہا اگر زندگی چاہتے ہو تو یہاں سے ہٹ جاؤ. فرمایا اگر تو زندگی چاہتا ہے تو ہٹ جائے, ہم غوث پاک کی اولاد, مخدوم سمنانی کا فیض ہمارے پاس ہے. اس نے آگے بڑھنے کی کوشش کی, حضرت نے پڑھ کر جیسے ہی اشارہ کیا اس کے جسم میں آگ لگی اور وہ پورا درخت جو تھا وہ راکھ کا ڈھیر بن گیا. اور اتنی آگ لگی اور اتنا ڈھیر کہ کئی ٹرک وہ راکھ اٹھائی گئی. اچھا جو حضرت کے مرید تھے بے ہوش ہو گئے. حضرت نے پھر پانی کہیں سے لے کر ان کو ڈالا, اور ادھر کیا ہوا, لوگوں نے کہا گئے تمہارے پیر صاحب, وہ درخت کے نیچے سے گزرے ہوں گے, اس نے مار دیا ہوگا. حضرت پریشان. پھر دوسرے راستے سے ادھر جب پہنچے, اب سب بستی والے دروازے بند کیے بیٹھے ہیں, وہی جن نہ آ جائے. پھر ایک بڑھیا نے دیکھن کہا یہ تو ہمارے پیر صاحب ہیں. پھر سب نے دروازے کھولے, فرمایا تم نے تو ہمیں ڈال دیا تھا مصیبت میں, اگر مخدوم کا کرم نہ ہوتا تو کیا ہوتا, اب معافی مانگ رہے حضور. پھر جو نہیں مانتے تھے وہ بھی مان گئے اور سب آ کر سلسلہ اشرفیہ میں داخل ہو گئے. یہ حضرت قطب ربانی ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ, کہ یہ ان کی حیات مبارکہ کے صرف چند واقعات ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. انشاءاللہ عرس کے موقع پر بھی آپ کے واقعات, حالات, روحانی کمالات, یہ سب آپ کے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. آپ اہل سلسلہ ہیں, اہل محبت ہیں, اس سلسلے سے داخل ہیں, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے پیر اور دادا پیر کا مقام کیا تھا, ان کا مرتبہ کیا تھا. آج جو ہم ان کے نام کے ساتھ خطبہ ربانی لکھتے ہیں, یہ معمولی بات نہیں ہے کہ آدمی گھر میں سوتا رہے, عبادت نہ کرے, ریاضت نہ کرے اور بعد میں خطبہ ربانی بن جائے. بچپن سے مجاہدہ کیا, ریاضت کی, ساری زندگی کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں کی, تب جا کر یہ مقام اور مرتبہ ملا کہ ان کا نام آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا. آخری بات یہ ہے کہ عموماً ہم یہ اعلان کرتے ہیں, آپ کو پتا ہوگا کہ جس بزرگ کا عرس آتا ہے ان کے ایصال ثواب کے لیے مریدین کچھ نہ کچھ پڑھیں. تو ابھی ایک ہفتہ تقریباً باقی ہے, آئندہ ہفتے عصر کے بعد چادر پوشی ہوگی, اس وقت یا اس کے بعد جو رات میں محفل ہوگی اس میں, بلکہ دوسرے دن بھی آپ دے سکتے ہیں کہ جو کچھ آپ پڑھیں, سورہ مزمل پڑھیں, سورہ یاسین پڑھیں, حضرت قطب ربانی کے ایصال ثواب کے لیے جو بھی آپ پڑھنا چاہیں وہ پڑھیں, اور اس کو ایک پرچے پر لکھیں کہ اس تعداد میں ہم نے پڑھا, اپنے نام کے ساتھ وہ ہمیں دے دیں, تاکہ آخری دن جو آخری دعا ہوگی اجتماعی دعا, اس میں حضرت کی بارگاہ میں ایصال ثواب کر دیا جائے. اور یہ اس لیے ہے کہ ادھر ایصال ثواب کا تحفہ پہنچے گا, ادھر ان کی نگاہ کرم پہنچے گی, یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب. آئیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت قطب ربانی ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ اور ان کے فرزند جانشین اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ، ان دونوں کے فیضان سے ہمیں مستفید فرما، ان کی نگاہ کرم عطا فرما، ان کے روحانی تصرفات عطا فرما، ان کی طرح اپنے معمولات پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کی ایک نگاہ کرم ہمارے اوپر ہو جائے، ہماری دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے. اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اسی محبت میں زندہ رہیں اور اسی محبت میں موت عطا فرما. الہ العالمین یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان سب کے علم میں عمل میں عمر میں برکت عطا فرما، ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریوں کو پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.